समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। कार्यक्रम में बात होगी उन खबरों की जिनका आपसे है सरोकार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और कार्यक्रम में उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी। एंड लाइक सरफिरोजी वाज जस्ट सेइंग, लिसनर्स, वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर।
बिल्कुल अभिषेक, कार्यक्रम में ये सब होगा, लेकिन आज के अंक को शुरू करने से पहले इतिहास की एक घटना का जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक 80 साल पहले 1945 में जापान के हिरोशिमा में आज ही के दिन परमाणु बम गिराया गया था और इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। ये हमला कई लोगों में दीर्घकालिक बीमारियों की भी वजह बना और इस घटना को आज एक बार फिर याद करने का कारण है परमाणु बमों जैसे जनसंहार हथियारों को रोकने और दुनिया को इससे मुक्त करने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराना। और कार्यक्रम में आगे इस घटना से जुड़ी और भी बातें होंगी, लेकिन आकाशवाणी की ओर से हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले का शिकार हुए सभी पीड़ितों को विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही अभिषेक शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।
यस, एंड वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स कर्तव्य भवन 3 at Kartavya Path in New Delhi today.
उत्तरकाशी जिले में खीर गंगा नदी पर बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
Both houses of parliament witnessed disruption by opposition parties over various issues.
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.5% और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर अपरिवर्तित रखा।
And IMD issues alert for extremely heavy rainfall for Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Kerala. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Har Ghar Tiranga. Well, Sarfirozi, today's special program is dedicated to a campaign that transformed the spirit of patriotism across the country, Har Ghar Tiranga, a nationwide celebration of unity and patriotism. In 2022, as India marked 75 glorious years of independence under the grand celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a unique initiative was launched by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, Har Ghar Tiranga, urging every citizen to bring the national flag home and hoist it with pride.
और अभिषेक, ये अभियान सिर्फ झंडा फहराने से जुड़ा नहीं है बल्कि एक भावना है जो हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जोड़ती है। बहुत लंबे समय तक तिरंगा सिर्फ संस्थानों, दफ्तरों या औपचारिक आयोजनों में देखा जाता था, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान ने इस धारणा को बदल कर रख दिया है और तिरंगे को हमारे जीवन, हमारे दिलों और हमारे घर घर तक पहुँचाया है।
The Ministry of Culture became the nodal ministry for this campaign, and what began as a government initiative quickly transformed into a people's movement from the snow-covered regions of Leh to the sun-kissed coasts of Kerala, from the bustling cities to the quiet villages. People of all ages and walks of life came together, hoisting the national flag with joy and pride. Whether online or offline, whether through door-to-door campaigns or massive digital outreach, Har Ghar Tiranga struck a patriotic chord. Selfies with the flag flooded social media as families, students, soldiers, farmers, everyone joined in.
और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश के लिए गर्व का क्षण तब आया जब 2022 में चंडीगढ़ में एक ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में 5,885 लोगों ने लहराते राष्ट्रीय ध्वज की दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय छवि बनाई और ये तिरंगा ही है जिसने हमें भाषा, क्षेत्र और आस्था से परे एकता में बांधा है।
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको
Yes, and this unity was seen across every sector of society, from Indian railways to civil aviation, from e-commerce platforms to defense forces and central armed police forces. Every arm of a country pitched in. Self-help groups across the nation, especially women-led groups, contributed to the production and supply of flags on a massive scale, weaving not just fabric but national pride. That is what Har Ghar Tiranga truly means, not just a flag on the wall, but a flag in the soul.
बिल्कुल अभिषेक, और बात करें हर घर तिरंगा अभियान की तो इसे हाइब्रिड प्रारूप में डिजाइन किया गया। लोगों को एक विशेष रूप से बनाई गई वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे ये अभियान एक डिजिटल आंदोलन में भी बदला। और अब जैसे जैसे हम एक और स्वतंत्रता दिवस के करीब पहुंच रहे हैं तो हर घर तिरंगा की भावना पहले से कई ज्यादा प्रज्वलित होती जा रही है।
Yes, and so let's hoist the tiranga not just on our rooftops but in our hearts. And when you raise the flag this year, remember, it's not just a flag. It's every sacrifice made for our freedom. It's every dream we hold for the future. And it's every heartbeat of this great nation.
तो श्रोताओं, आइए इस स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को और भी भव्य बनाएं और दिल में गर्व लिए तिरंगा फहराएं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने अपील की है कि हम सभी झंडे के साथ एक सेल्फी लें, उसे harghartiranga.com पर अपलोड करें और दुनिया को दिखाएं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है।
Yes, and we should also talk about Hiroshima Day and pay homage to the victims. Today marks the 80th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima.
बिल्कुल अभिषेक, हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की याद में मनाया जाता है। ये एक दुखद घटना थी जिसमें 1,40,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया।
It was the first time a nuclear weapon called Little Boy was used in warfare, revealing the terrifying potential of human-made destruction. The day serves as a solemn reminder of the horrors of the war and the urgent need for global peace. Survivors, known as Hibakusha, shared their deeply personal stories, turning their pain into a powerful call for peace and nuclear-free future. Alas, despite these reminders and lessons from Hiroshima, many nations continue to expand and modernize their nuclear arsenals. The mad race for nuclear dominance continue in the pursuit of more power. Experts warn of a new nuclear arms race with major powers such as the US, Russia and China modernizing and expanding their arsenals. North Korea's continued missile tests and rising geopolitical rivalries are heightening global anxieties. Hiroshima Day is not just about remembering the past. It is a wake-up call for the present and, of course, the future. It urges humanity to reflect deeply and choose diplomacy over destruction and peace over power. In a world armed with the ability to destroy itself, Hiroshima stands as a timeless plea, never again. With Gaurav Kumar, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
और श्रोताओं, अब है कार्यक्रम का वो हिस्सा जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। तो अभिषेक, कहां से शुरू कर रहे हैं आज?
यस, वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम संबलपुर एंड बरपाली, अ विलेज इन बरगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, इज रिनाउंड फॉर इट्स इंट्रिकेट टाई एंड डाई और इकत हैंडलूम वर्क, एस्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ संबलपुरी साड़ीज। And the town serves as a center for weavers who produce stunning designs using both tassar silk fabrics and cotton. And a correspondent reports that the tie dye art form, which is popularly known as bandakala, is a highly skilled and time-consuming craft.
While Barpali itself is a significant hub for tie and dye craft, it is more accurate to describe it as a region or cluster of villages involved in the tie and dye rather than a single tie and dye village. Burger deputy director of the textile office said that there are over 2,000 handloom spread across several pockets of cluster within Barpali block, each about 5 kilometers apart. Currently, 6 weaver cooperative societies are operating in Barpali block, where weavers receive raw materials, infrastructures and time manner training, said Panchanan Meher, secretary of Barpali Kosta Weavers Cooperative Society. The weavers of Barpali produces sari, bed sheets, dress materials, napkins and furnishing items, mainly using cotton yarn within little silk yarn. The weaver of Barpali have elevated this art form to national and international level. Their passion has been recognized as well. According to reports, there are 23 national handloom awardees and 7 Santhakavi awardees in Barpali alone. The Indian Institute of Handloom Technology, Bargarh, plays a pivotal role in the development of weavers in the region and the state. The institute educates students to become enlightened professionals who can lead the handloom and textile industry and society. पर परिक्रमा, विस्मिता प्रधान, आकाशवाणी संबलपुर।
और ओडिशा के बाद आपको लेकर चल रहे हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में माओवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। एक ओर जहां नक्सली उन्मूलन अभियान चल रहे हैं, वहीं नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष मार्च महीने तक देश को नक्सल की समस्या से मुक्त कर दिया जाए।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और सामाजिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक नई शुरुआत पूना मार्गेम अभियान के माध्यम से की गई है। इसका अर्थ होता है पुनर्वास से पुनर्जीवन। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत मुख्य धारा में लौटे सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत शामिल कर उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जब भी कोई भी नक्सल कार्डर से कोई सरेंडर करते हैं तो उनका कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद हम लोग उनको नक्सल पुनर्वास केंद्र में रखते हैं, जहां पे उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ट्रेनिंग उसी ट्रेड्स में दे रहे हैं जहां का लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो महिलाएं माओवादी हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गारमेंट फैक्ट्री एक हमारा है जो कि हमारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, तो वहां पे हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वहीं पे उनका प्लेसमेंट भी आसानी से हो सकता है।
वहीं प्रशिक्षण ले रहे आत्मसमर्पित माओवादी ने बताया कि इस अभियान के तहत समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उन्हें अच्छा लग रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद वे फिर से एक नई शुरुआत करेंगे।
नक्सली संगठन में 2016 से 2025 मार्च महीने से काम किया था। सिक्योरिटी, कारपेट और पुलिस दमन बढ़ने के कारण से आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर और जेसीबी के बारे में सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। ट्रैक्टर सीखने के बाद अपना अपना गाँव में जाके खेतीबाड़ी काम पुनर् जिंदगी जीने का शुरू करेंगे।
पूना मार्गेम अभियान का उद्देश्य केवल माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि माओवाद की जन विरोधी विचारधारा को समाप्त कर बस्तर को स्थायी शांति, समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द की ओर ले जाना है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Pirahera commenced on the 4th of August, marking the beginning of 10 days of solemn tradition and spiritual celebration. The ancient pageant honors the sacred tooth relic of the Buddha and is organized by Sri Dalada Maligawa, or Temple of the Tooth. The procession featured 12 temple tuskers and vibrant participation from the four guardian Devalis, Natha, Vishnu, Kataragama and Patini. The Pirahera is more than a cultural event. It is a profound symbol of Sri Lanka's Buddhist heritage and solemn invocation for blessings, peace and prosperity. Visitors from across the island and abroad continue to gather in large numbers, reflecting the festival's enduring significance and timeless appeal. Well, moving on, telemedicine, the use of technology to deliver healthcare at a distance, is fast transforming how medical services reach remote corners of the country. And one of the premier institutions leading this change in South India is the Jawaharlal Nehru Institute of Postgraduate Medical Education and Research in Puducherry. Recognized as a regional resource center for telemedicine, JIPMER has recently launched a series of new initiatives aimed at strengthening digital healthcare delivery.
JIPMER, supported by the Union Ministry of Health and Family Welfare, has been playing a key role in expanding telemedicine across South Indian states, including Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and Puducherry. In a fresh move to take healthcare deeper into rural and underserved areas, JIPMER Director Dr. V.S.N. Negi has commissioned 3 new telemedicine initiatives. The first, JIPMER Tele Yanam Service, connects the JIPMER Yanam Center with the JIPMER's emergency medical services and women and child hospital blocks in Puducherry. Telemedicine units have been set up in both locations, enabling 24/7 online consultations for the people of Yanam with specialist doctors. The second initiative, JIPMER Teleambulance Service, outfits JIPMER ambulances with live telemedicine equipment. This allows doctors at the emergency medical services block to assess and guide treatment for accident victims right from the site of the incident, even before they are brought to the hospital. To improve patient satisfaction and gather real-time input, patient attendant feedback kiosks have been installed on 3 floors of the emergency medical services block. These kiosks allow patients and their families to provide feedback, which is regularly reviewed for service enhancement. JIPMER is also in the process of developing a patient attendant navigation app. This digital tool will guide patients and visitors to locate OPDs, departments, labs and blocks within the hospital, reducing confusion and saving time. With these forward-looking initiatives, JIPMER continues to harness technology to bring timely and quality healthcare to the doorstep of the common man. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
श्रोताओं, आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर और देंगे वहां की भी हलचल।
In basketball, Indian men's team put up a brilliant fight but lost 91-84 to Jordan in overtime in its FIBA Asia Cup 2025 Group C opener at the King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi Arabia. World number 76, India went toe-to-toe with 35th-ranked Jordan in an end-to-end contest as the two teams finished regulation time tied at 80-80. The valiant effort, however, fell short in added time. Arvind Muthukrishnan led India scoring with 14 points and was well supported by Pranav Prince and Harsh Dagar, 12 each, Pratyanshu Tomar, 11, and captain Muin Beg Hafiz, 10. The team next faces China on Thursday, August 7th, before closing out the group stage against host Saudi Arabia on Saturday. And now moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices today ended with modest losses for the second straight session. The market sentiment remained cautious as investors assessed the Reserve Bank of India's monetary policy decision and continued concerns over US trade policies. Sensex dropped 166 points to close at 80,544. Nifty dipped 75 points to settle at 24,574.
श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन खास हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है।
We remember freedom fighter Surendranath Banerjee, who died on the 6th of August 1925. Popularly known as Rashtraguru, Banerjee founded the pioneer nationalist organization in British India, Indian National Association, in 1876.
Surendranath Banerjee was born in Calcutta on the 10th of November 1848. He cleared the Indian Civil Service exam in 1869-1870 and was posted to Sylhet as an assistant magistrate after winning the case against his disqualification. However, he was soon sacked over a clerical error, and this time his appeal was dismissed by the courts too. In 1876, Banerjee formed the Indian Association, which was the first pan-India nationalist organization. He campaigned against the Ilbert Bill and became a member of the Indian National Congress soon after its formation in 1885. He was vocal in his opposition to the partition of Bengal in 1905.
Banerjee was in the forefront of the movement and organized protests, petitions and extensive public support across Bengal and India, which finally compelled the British to reverse the bifurcation of Bengal. He was an important figure in the Swadeshi movement. Banerjee was the patron of Indian leaders like Gopal Krishna Gokhale and Sarojini Naidu. The pioneer leader of the Indian independence movement breathed his last on the 6th of August 1925.
The publishing of the Vande Mataram English newspaper began on the 6th of August 1905 from Kolkata. It was founded by Bipin Chandra Pal and edited by Aurobindo Ghosh. Vande Mataram's aim was to prepare Indians to struggle for complete independence. Among its staff were not only Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh, but some other very able writers like Shyam Sundar Chakrabarty, Hemendra Prasad Ghosh and Bijoy Chatterjee. Aurobindo published in the paper a series of articles on the political philosophy of revolution.
Vande Mataram was a force in the country which none dared to ignore, however much they might fear or hate it. And Aurobindo was the leading spirit, the central figure in the new journal. The opportunities that were denied him in the National College, he found in the pages of the Vande Mataram, and from a tutor of a few youths, he thus became the teacher of a whole nation.
The Vande Mataram was almost unique in journalistic history in the influence it exercised in converting the mind of a people and preparing it for revolution.
We remember revolutionary Ram Babu, alias Bhagat, a resident of Patna, Bihar. He was an activist of the Hindustan Socialist Republican Army and was severely injured in the explosion of a bomb he was preparing in a room in Patna city to use against the British. Ram Babu was sent to Patna General Hospital, where he died on the 6th of August 1931. The soul.
We also remember Martyr Gunnu, a resident of Satara, Maharashtra, who took part in the First War of Independence in 1857. Initially a sepoy in the East India Company Army, he joined the uprising and fought the British on several occasions at different places in Maharashtra. He was caught by the company troops in the course of an engagement and put on trial for desertion and mutiny. Gunnu was sentenced to be transported for life with hard labor and irons, and died in custody on the 6th of August 1859 in the Andaman Islands.
आज एस के पोटेकार्ट की भी पुण्यतिथि है. ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम उपन्यासकार पोटेकार्ट इंडोनेशिया तथा अफ्रीका के प्रवास वर्णन, विषकन्या नामक कहानी संग्रह और ओरु तेरश वंटे कथा आदि रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे. इनकी रचनाओं को केरल अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1971 में केरल साहित्य अकादमी के भी ये सभापति मनोनीत किए गए. 1928 में राजनीति नामक इनकी पहली कहानी छपी थी. इसके अलावा इनकी रचनाओं में चंद्रकांतम, मणिमलिका और नादान प्रेमम शामिल हैं.
बेंजामिन जॉनसन पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1637, आल्सो नोन एज बेन जॉनसन. ही वाज एन इंग्लिश प्लेराइट, पोएट एंड एक्टर. जॉनसन्स आर्टिस्ट्री एक्सर्टेड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश पोएट्री एंड स्टेज कॉमेडी. ही पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. He's best known for the satirical plays Every Man in His Humor, Volpone or the Fox, The Alchemist and Bartholomew Fair in 1614, and for his lyric and epigrammatic poetry. He's regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I.
आज बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी की भी पुण्यतिथि है. ये असमिया साहित्यकार थे. इनके द्वारा रचित उपन्यास इयारू इंगम के लिए 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1989 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया. ये साहित्य अकादमी दिल्ली और असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे. बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने कई विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। इनका अधिकांश लेखन असमिया भाषा में हुआ। 1950 में संपादित असमी पत्रिका रामधेनु का इन्होंने संपादन किया, जिसने असमिया साहित्य को नया मोड़ दिया। इनके चर्चित उपन्यासों में यारु इंगम के अलावा मृत्युंजय, राजपथे, रिंगियाई, आई आदि शामिल हैं।
मनोज नाइट शम्मेलन वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1970। ही वॉज एन अमेरिकन फिल्म मेकर। His films often employ supernatural plots and twist endings. The cumulative gross of his films exceeds $3.3 billion globally. Shyamalan has received various accolades. And Shyamalan was born in Mahe, India, and raised in Penn Valley, Pennsylvania. His early films include Praying with Anger in 1992 and Wide Awake 1998, before his breakthrough film The Sixth Sense in 1999, which earned him the Academy Award nominations for Best Director and Best Original Screenplay. He then released Unbreakable in 2000, Signs 2002, and The Village in 2004, among many others. Let's go ahead and listen to a dialogue from his movie The Sixth Sense.
I see dead people. I see dead people.
Yes, and Alfred Tennyson, 1st Baron Tennyson, was born on this day in 1809. He was an English poet. He was a poet laureate during much of Queen Victoria's reign. In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu. He published his first solo collection of poems, chiefly lyrical, in 1830, Claribel and Mariana, which remain some of Tennyson's most celebrated poems, were included in this volume. Although described by some critics as overly sentimental, his poems ultimately proved popular and brought Tennyson to the attention of well-known writers of the day, including Samuel Taylor Coleridge. Tennyson's early poetry, with his medievalism and powerful visual imagery, was a major influence on the pre-Raphaelite Brotherhood.
आज रॉबिन बनर्जी जी की भी पुण्यतिथि है। ये असम के प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे। इन्होंने कुल 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई। इन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने और सहेजने के लिए अपना मेडिकल प्रोफेशन भी दांव पर लगा दिया। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रॉबिन बनर्जी के इसी समर्पण के लिए इन्हें 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। इन्हें अपनी वाइल्ड लाइफ फिल्मों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने कुल 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं, जिनमें काजीरंगा, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ड्रैगन्स ऑफ कोमोडो आइलैंड, द अंडरवाटर वर्ल्ड ऑफ शार्क्स, राइनो कैप्चर आदि शामिल हैं।
स्टीवन पॉल स्मिथ वाज बोर्न ऑन दिस डे 1969, नोन एज एलियट स्मिथ। ही वाज एन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड सिंगर सॉन्ग राइटर। ही वाज बोर्न इन ओमाहा, नेब्रास्का, रेज्ड प्राइमरली इन टेक्सास, and lived much of his life in Portland, Oregon, where he gained popularity. Smith's primary instrument was the guitar, though he also played piano, clarinet, bass guitar, drums and harmonica, and he had a distinctive vocal style. Let's listen to his hit track, Christian Brothers. Yes, and John Wilden Hughes Jr. passed away on this day in 2009. He was an American filmmaker and producer. He is best known for writing, producing and directing such films as 16 Candles, The Breakfast Club, Weird Science, Ferris Bueller's Day Off, Planes, Trains and Automobiles and Uncle Buck, and writing Pretty in Pink and Home Alone. And also Andy Warhol, born Andrew Warhola Jr., was born on this day in 1928. He was an American visual artist, film director and producer. A leading figure in the pop movement, Warhol is considered one of the most important American artists of the second half of the 20th century. His works explore the relationship between artistic expression, advertising and celebrity culture that flourished by the 1960s and span a variety of media, including painting, sculpture, photography and filmmaking.
आज राजेंद्र सिंह जी का भी जन्मदिन है। ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।